जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय गो गिरिवर जशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुन तीरवन चारी यमुन तीरवन चारी जय रा जय राधा माधव कुंज विहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर जय गोपी जशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुन तीरवन चारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा राम राम हरे श्याम सुंदर राय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय जय प्रभुपद जय प्रभुपद प्रभुपद श्रील प्रभुपद जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज का आचार्य अष्टोत्तर सत श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की इस्कान संस्थाप का आचार्य श्रील प्रभुपाद की हरिदास ठाकुर की श्री श्री कृष्ण बलराम की श्री श्री राधा श्याम सुंदर की श्री श्री निताई गौर सुंदर की समवेत भक्त वृंद की श्री श्री गुरु एम गौरांग की। ओम अज्ञान्तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वाञ्छाकल्पतरुव्यस्य कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। हम लोग आज पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम के अष्टम स्कंध के छठे अध्याय का श्लोक 29 30 31 तीन श्लोक 29 निकालिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ते वैरोचनिम् आसीनम् गुप्तम् च असुरयुत्थपहि श्रिया परमया जुष्टम् जित अशेषम् उपागमन् ते वैरोचनिमासीनम् गुप्तम् चासुरयुत्थपहि श्रिया परमया जष्टम जितासे समुपागमन। अनुवाद। देवगण विरोचन के पुत्र बलि महाराज के पास गए और उनके निकट बैठ गए। उस समय बलि महाराज की रक्षा असुरों के सेना नायकों द्वारा की जा रही थी और वे अत्यंत ऐश्वर्यशाली थे। उन्होंने सारे ब्रह्मांडों को जीत लिया था। आगे महेंद्र श्लक्षणया वाचा शांत इत्वा महामति अभ्यभासत तत् सर्वं शिक्षितं पुरुषोत्तम। महेन्द्र श्लक्षणया वाचा शांतयित्वा महामति अभ्यभासत तत्सर्वं शिक्षितं पुरुषोत्तम। अनुवाद। अत्यंत बुद्धिमान देवताओं के राजा इंद्र ने बलि महाराज को विनीत शब्दों से प्रसन्न कर लेने के बाद उन सारे प्रस्तावों को अत्यंत विनय पूर्वक प्रस्तुत किया जिन्हें भगवान श्री विष्णु ने उन्हें सिखलाया था। तत् तु अरोचत दैत्यस्य तत्र अन्ये ये असुर अधिपः संबरः अरिष्ट नेमिश्च अरिष्ट नेमिश्च ये च त्रिपुरवासिनः तत्त्वरोचत दैत्यस्य तत्रान्ये ये सुराधिपः संबरोरिष्ट नेमिष्ये संबरोरिष्ट नेमिश्च ये च त्रिपुरवासिनः तत्त्वरोचत दैत्यस्य तत्रान्ये ये सुराधिपः संबरोरिष्ट नेमिश्च ये च त्रिपुरवासिनः तत्त्वरोचत दैत्यस्य तत्रान्ये ये सुराधिपः संबरोरिष्ट नेमिश्च ये च त्रिपुरवासिनः। बोलिए। तत्त्वरोचत दैत्यस्य अन्ये ये सुराधिपः संबरोरिष्ट नेमिश्च माताजी तत्रान्ये ये सुराधिपः तत् वे सारे शब्द तो लेकिन अरोचत अत्यंत रुचिकर थे दैत्यस्य बलि महाराज के लिए तत्र तथा अन्य अन्य ये जो असुर अधिपा, असुरों के प्रधान संबर संबर अरिष्ट नेमी च भी ये अन्य जो च तथा त्रिपुरवासीन, त्रिपुर के सारे निवासी। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। अनुवाद। राजा इंद्र द्वारा रखे गए प्रस्तावों को बलि महाराज ने, उनके सहायकों ने, जिनमें संबर तथा अरिष्ट नेमी प्रमुख थे, एवं त्रिपुर के अन्य सारे निवासियों ने तुरंत ही मान लिए। तात्पर्य। इस श्लोक से प्रकट होता है कि उच्च लोकों में भी इस लोक में व्याप्त राजनीति, राजनय, ठगी की प्रवृत्ति तथा दो पक्षों के बीच पाए जाने वाले व्यक्तिगत तथा सामाजिक समझौते पाए जाते हैं। देवतागण बलि महाराज के पास अमृत बनाने का प्रस्ताव लेकर गए थे और असुरों ने इसे यह सोचते हुए तुरंत स्वीकार कर लिया कि देवता पहले से निर्बल हैं, अतएव जब अमृत निकलेगा तो असुर उन्हें प्राप्त करके अपने निजी कार्य में ला सकेंगे। निसंदेह देवताओं के भी मनोभाव ऐसे ही थे। अंतर इतना ही था कि भगवान श्री विष्णु देवताओं के पक्ष में थे क्योंकि वे उनके भक्त थे, जबकि असुर उनकी कोई परवाह नहीं करते थे। सारे ब्रह्मांड में दो ही दल हैं, विष्णु दल या ईश्वर भावना भावित दल तथा ईश्वर विहीन दल। ईश्वर विहीन दल कभी भी सुखी या विजयी नहीं होता, जबकि ईश्वर भावना भावित दल सदैव सुखी तथा विजयी होता है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। हम लोग श्रीमद् भागवतम के समुद्र मंथन के प्रसंग को पढ़ रहे हैं। समुद्र मंथन की आवश्यकता पड़ी, इसका कारण था कि देवता लोग श्रीहीन हो गए थे। उनके सारी संपदा नष्ट हो चुकी थी, उनका ऐश्वर्य समाप्त हो चुका था और वे बड़े ही दीन अवस्था में थे। उनका वर्णन किया गया है कि लड़ाई हुई और दैत्य लोग उनके खूब पिटाई किए। सीता युद्ध है, एकदम धारदार तलवार था, तीक्ष्ण आयुध से उनके खूब पिटाई किए। अब देवताओं की यह स्थिति हो गई थी कि गिर गए तो खड़ा होना भी मुश्किल था, किसी के मन में ये प्रश्न उठ सकता है देवताओं की यह गति कैसे हो गई। और उसके पीछे कारण है कि दुर्वासा जी उनको साप दे दिए थे। इंद्र के व्यवहार के चलते दुर्वासा जी कुपित हो गए। एक बार की घटना है कि दुर्वासा जी वैकुंठ से आ रहे थे, वैकुंठ में गए थे, भगवान का दर्शन किए और भगवान के पुजारी लोग, भगवान के सेवक लोग दुर्वासा जी का सम्मान किए, भगवान का प्रसाद माला उनको भेंट किए। दुर्वासा जी वैकुंठ से लौट रहे थे और इंद्र ऐरावत पर चढ़ करके कहीं जा रहे थे। रास्ते में दुर्वासा जी इंद्र को देखे, इंद्र राजा हैं, बड़े व्यक्ति हैं, और उनके पास प्रसाद माला थी और उसी को वे इंद्र को दे दिए, भगवान के प्रसाद को इंद्र को दिए। लेकिन इंद्र के मन में विचार आया कि हम यह पुराना माला पहनेंगे, वे माला को हाथी के मस्तक पर फेंक दिए। हाथी अपना सूंड से उस माला को पकड़ लिया और सूंड से लेकर के अपने पैर के नीचे कुचल दिया। अब इसको देख करके दुर्वासा जी को बड़ा कष्ट हुआ और तुरंत वे साप दे दिए कि तीनों संसार के साथ निर्फ्री हो जाओ। अब तो दुर्वासा जी का वचन अमोघ है, उसका प्रभाव आ गया और देवताओं की यह स्थिति हो गई कि अब कोई यज्ञ करने वाला नहीं था। अब यज्ञ ही नहीं होगा तो समृद्धि का कोई प्रश्न ही नहीं है। समृद्धि तो पुण्य कार्य से आती है, यज्ञ से, तप से, दान से समृद्धि आती है। कहीं यज्ञ नहीं हो रहा था और सब समृद्धि समाप्त हो गई। समृद्धि रहने से ही यज्ञ होता है और यज्ञ होता है तो समृद्धि और बढ़ती है। ये सब सूक्ष्म सिद्धांत है। अब कहीं यज्ञ नहीं हो रहा था, देवताओं को भोजन ही नहीं मिल रहा था, वो देवता बिल्कुल निर्बल हो गए, उनका तेज समाप्त हो गया, विगत प्रभान, भोजन ही नहीं था, बल नहीं है तो तेज कहां से आएगी। अब देवता लोग प्रयास किए कि हम लोग इसका निवारण कुछ ढूंढ ले। वो देवताओं के जो लीडर थे, पोस्ट पर थे, वे लोग आपस में कई एक मीटिंग करके और कोई निवारण निकालना चाहते थे। एंड कई एक मीटिंग किए लेकिन उनको कोई निवारण नहीं मिला। तब वे मेरो मूर्धनी सुमेरु पर्वत के ऊपर ब्रह्मा जी का आवास है तो वहां गए, ब्रह्मा जी से अपनी स्थिति को बतलाए और ब्रह्मा जी उनको देखे तो बड़ी ही दया आ गई। वही शब्द विगत प्रभान, वे देख रहे हैं कि देवताओं का तो सब तेज ही खत्म हो गया, इनके बड़ी दुर्दशा है। वे विचार करने लगे और सब देवताओं को लेकर के वे भगवान के पास गए। वे क्षीर समुद्र के तट पर गए और वहां ब्रह्मा जी स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे देवताओं के साथ, वहां एक विशेष बात कहे, श्रुत पूर्वाय अदृष्टाय। यद्यपि भगवान का दर्शन नहीं किए हैं, वे सामने नहीं थे, लेकिन भगवान के विषय में वे सुन चुके थे। पीछे जगह कम होगा तो माता जी लोग और आगे आकर के बैठ सकती है, आगे है जगह। तो वे लोग स्तुति करने लगे और स्तुति का मुख्य विषय था, वे प्रार्थना कर रहे थे कि आप अपना दर्शन दीजिए, हम लोग हम दर्शन चाहते हैं। और भगवान उनके स्तुति से प्रसन्न हुए और उनके समक्ष प्रकट हो गए। भगवान प्रकट हुए और इतनी कांति निकल रही थी, इतना तेज था कि देवता लोग दर्शन नहीं कर पाए। भगवान बिल्कुल सामने आ गए लेकिन भगवान के तेज के चलते देवता लोग दर्शन नहीं कर पाए। भगवान के दर्शन करने की बात तो दूर है, अब उनका आंख ऐसा चौंधिया गया कि वे आसपास के चीज भी नहीं देख पा रहे थे, अब कुछ भी उनको नहीं देख रहा था। ब्रह्मा जी भगवान का दर्शन किए और ब्रह्मा जी स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बहुत बहुत बात कहे हैं, उनके विभूति का वर्णन किए हैं और एक बात कह रहे हैं कि इस संसार की स्थिति है कि क्लेश भोरी अल्प सारणी। यहाँ व्यक्ति कोई उपक्रम प्रारंभ करता है, कोई कर्म करता है, तो संसारिक कर्म का स्वरूप है क्लेश भूरिय अल्प सारण, इसमें परिश्रम बहुत अधिक है और फल बहुत थोड़ा है और विफलाने वा कभी कभी निष्फल भी चला जाता है। खूब परिश्रम कर रहे हैं और फल बहुत थोड़ा मिलता है और कभी कभी पूरा परिश्रम ही बेकार चला जाता है। लेकिन जो कर्म आपको अर्पित है तो उसके साथ ऐसी बात नहीं है, आपका कि आपको अर्पित किया हुआ कर्म कभी निष्फल नहीं जाता है। और भगवान ने स्तुति किए और भगवान उनसे कहने लगे कि हम आप लोगों के हृदय की बात जानते हैं, लेकिन आप लोग एक कार्य कीजिए, आप लोग जा करके दैत्यों से संधि कीजिए और अमृत प्राप्त करने का प्रयास कीजिए, अमृत प्राप्त हो जाएगा। अमृत प्राप्त होने से आप लोगों का ऐश्वर्य पुनः लौट आएगा अमृत पीने से। अब इस बात को कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, कह रहे हैं कि एक एवेश्वर तस्मिन सूर्य कार्य सुरेश्वर। भगवान उपाय बतला रहे हैं, कोई सोच सकता है कि भगवान के शरण में आए हैं और भगवान प्रसन्न है, उनके समक्ष आए हैं, तो उपाय क्या बतला रहे हैं? डायरेक्ट उनके समस्या का समाधान ही क्यों नहीं दे रहे, समस्या कोई क्यों नहीं दूर कर रहे? और सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि भगवान सक्षम थे, एक एव ईश्वरे तस्मिन सुर कार्य, जो देवताओं की समस्या थी और उसको दूर करने में जिस कार्य को कह रहे थे कि देवता लोग करे, समुद्र से अमृत प्राप्त करे और उसमें असुरों का सहायता ले, और अमृत प्राप्त करना है तो भगवान क्यों सुलभ नहीं करा देते, क्या वे अकेले नहीं कर सकते? सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि एक ईश्वर तस्मिन सूर्य कार्य सुरेश्वर, वे सारे देवताओं के ईश्वर हैं, रक्षक हैं, वे समर्थ हैं, अकेले भी वे कर सकते थे, अकेले करने में वे पूर्ण सक्षम हैं, लेकिन फिर भी देवताओं को उपाय बतला रहे हैं, उसके पीछे कारण बिहार तुकाम, भगवान बिहार करना चाहते, भगवान समुद्र मंथन के द्वारा उसके माध्यम से लीला करना चाहते, विहार करना चाहते, इसलिए देवताओं को उपाय बतला रहे, उनको बुद्धि दे रहे। और यह सिद्धांत समझ लेना चाहिए कि भगवान अकेले सक्षम थे, किसी की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन अपने आनंद के लिए लीला करने के लिए देवताओं को सलाह दी कि तुम लोग जाओ और दैत्यों से संधि करो। देवता लोग तो झेप गए, जो इतनी पिटाई किए हैं, रोज जिनसे झगड़ा है उनके पास हम जाए? और भगवान कह रहे हैं कि अरे उपसंधेया सती कार्यार्थ गौरव है, जब बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है तो विपक्ष का भी सहायता लेना पड़ता है, हम लोग इस समय भी देखते हैं कि कई एक विरोधी देश कोई कोई कार्य एक मिलकर करते, एक साथ मिलकर के करते, क्योंकि किसी किसी देश के पास टेक्नोलॉजी है, अब टेक्नोलॉजी उनके पास है और दूसरा साधन दूसरे के पास है, तो दोनों मिल करके प्रोटेक्शन कर पाएंगे। और भगवान सिद्धांत दे रहे हैं कि अरयो की संधेया, दुश्मन से भी संधि करना पड़ता है। सती कार्यार्थ गौरव है, जब बहुत बड़ा कार्य है तो दुश्मन से संधि करना पड़ता है। तो तुम लोग दैत्यों के पास जाकर के संधि करो, उनसे संधि करो। और दैत्यों के पास भेज रहे हैं तो कह रहे हैं क्योंकि इस समय काल उनके अनुरूप है। वास्तव में काल का बहुत भारी प्रभाव होता है। श्रीमद् भागवतम में तो कहा गया है कि किसी को सुख दुख सफलता विफलता प्रदान करने वाला काल ही है। काल प्रतिकूल रहता है तो हमारा सब उपक्रम व्यर्थ चला जाता है। और कह रहे हैं कि काल उनके अनुरूप है, और तुम लोग जा करके दैत्यों से संधि करो और सब चीज बतलाए। तुम लोग पर्वत को मथानी बनाओ और वासुकी नाग को नेती बनाओ और भी औषधि डाल करके क्षीर समुद्र में मंथन करोगे तो अमृत प्राप्त होगा। अरे कि बस अमृत प्राप्त करने तक ही दैत्यों से संधि की आवश्यकता है। अमृत प्राप्त हो जाएगा तो अब संधि की कोई जरूरत नहीं है। और एक उदाहरण दी है कि कभी कभी ऐसा किया जाता है, जैसे कोई चूहा और सर्प दोनों पिटारी में बंद हो गए। चूहा फंसाने वाला कुछ यंत्र रखते हैं ना, पिटारी कहते हैं, और उसमें चूहा तो बंद है, सांप भी बंद हो गया। अब ढक्कन बंद हो जाएगा, सांप भी नहीं निकल पाया, तो अब दोनों संकट में है, तो दोनों संधि कर लेते हैं। सांप कहा ये मुस भाई, हे चूहा, तुम एक काम करो, ये तो लकड़ी है, इसमें एक होल बना दो, एक छिद्र बना दो, और छिद्र बना देगा तो हम दोनों लोग निकल जाएंगे। तो वह चूहा सोचा कि अच्छी बुद्धि प्रदान किए, हमको ये पतला सा काट छेदने में कौन परिश्रम है, हम भी निकल जाएंगे, ये भी निकल जाएंगे। जो चूहा काट छेद दिया, हम दरवाजा बना दिया, तब सांप कहता है कि हम चेक कर ले कि हमारे निकलने भर हुआ कि नहीं। अब भाई चूहा के सामने सांप कह रहा था कि आप तो हो सकता है कि इस छिद्र से निकल जाएंगे, लेकिन हमारे निकलने भर जगह नहीं है, तो फिर अब कौन छिद्र बढ़ाएगा, तो पहले मैं चेक कर लेता हूँ कि हम निकल पा रहे हैं कि नहीं। तो चूहा कहा कि ठीक है, आप देख लीजिए। तो सांप निकल गया और ज्यों ही निकला तो अब घात लगा करके बैठ गया कि ज्यों ही चूहा बाहर आएगा और तें उसको खा जाएंगे, और हुआ ऐसा ही। तो चूहा जो खुद छेद बनाया है उसी से सांप निकला है, और अब जब ही चूहा बाहर आया तो सांप उसको खा गया, पकड़ लिया। और कह रहे हैं भगवान कि इसी नीति का अवलंबन लेना चाहिए। जब तक अमृत हाथ में नहीं आ जाता है तब तक के लिए तुम लोग असुरों से संधि करो। अब भगवान कह रहे हैं और देवता लोग भगवान की बात को माने। देवताओं की यही विशेषता है कि चाहे वे गलती करे या सही करे, भगवान के आश्रय में रहते हैं और इसका उनको बहुत भारी लाभ मिलता है। अब भगवान कह रहे हैं तो उनकी बात मान करके देवताओं के लीडर है इंद्र, गए दैत्यों के लीडर बलि महाराज के पास और उसी को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। ते वैरोचनिम आसीनम गुप्तम चास्र युद्धपय। जब इंद्र बलि महाराज के पास जा रहे हैं और उसका वर्णन कर रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी कह रहे कि ते इंद्र थे और उनके साथ उनके सहयोगी देवता भी थे, कई एक देवता साथ में थे। और ते वैरोचनिम आसीनम गुप्तम चास्र युद्धपय, कि वे गए हैं तो देख रहे हैं कि बलि महाराज आसीनम विरोचन के पुत्र बलि महाराज बैठे हुए। बलि महाराज के लिए कई एक बार वैरोचन शब्द आ जाता है, क्योंकि विरोचन के पुत्र हैं। प्रहलाद महाराज के पुत्र हैं विरोचन और विरोचन के पुत्र हैं बलि। ते वैरोचनिम आसीन, देवता लोग वहां गए तो देखे कि बलि महाराज आसन पर बैठे हैं। गुप्तम चासुर युद्ध पर, और बड़े बड़े नेता लोग, लीडर लोग, सेनापति लोग उनके रक्षा में तैनात हैं। फ्रिया परमया जुष्टम जिता शेष मुपागमन। बलि महाराज परम समृद्धि से युक्त हैं, बहुत उनका ऐश्वर्य है और जित अशेषम, अवे सारे ब्रह्मांड को जीत लिए। इस समय पूरा संसार बलि महाराज के अधीन है, बलि महाराज आसन पर बैठे हैं और असुरों के जो बड़े बड़े सेना नायक हैं उनकी रक्षा में हैं और बहुत भारी संपदा वहां दिख रही है, ऐश्वर्य से युक्त है। तो वहां देवता लोग गए उपागमन। जब देवता लोग वहां गए तो आगे वर्णन कर रहे हैं कि महेंद्र लक्षणया वाचा शांत इत्वा महामति। इंद्र बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं, उनको यह पता है कि किस स्थिति में किस व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, या वे दृढ़ संकल्प है कि जैसे भगवान कहे हैं वैसा ही करना है, भगवान के आज्ञा का पालन करना है। तो श्लक्षणया वाचा शांत इत्वा, पहले गए बहुत मधुर भाषा में उनसे बोलने लगे, बलि महाराज से वे बात कर रहे हैं और बड़े ही मधुर भाषा में। यद्यपि अब पक्ष के अनुसार विचार किया जाए तो एकदम शत्रु के पास गए हैं, लेकिन कह रहे हैं कि श्लक्षणया वाचा, बहुत मधुर वचन में उनको प्रसन्न करके अभ्यभाषत वे उनसे प्रस्ताव रखे, बोले क्या बोले, तत्सर्वम शिक्षितम पुरुषोत्तमा। जो भगवान उनको निर्देश दिए थे, जैसा प्रस्ताव रखने को कहे थे, और उस प्रस्ताव को बलि महाराज के समक्ष में रखे। अब आगे कह रहे हैं तत्तु अरोचत दैत्यस्य, बलि महाराज को वह प्रस्ताव बहुत अच्छा लगा और दैत्यस्य तत्रान्य ये सुराधिपा, जो दूसरे भी असुर नायक थे उनको भी यह पसंद पड़ा। असुर नायकों का नाम दे रहे हैं संबर अरिष्ट नेमिश्च, असुरों में मुख्य थे संबर और अरिष्ट नेमी, और कह रहे कि ये चत्रपुर वासी न, और भी जो वहां के निवासी थे सबको पसंद पड़ा। बलि महाराज इंद्र के प्रस्ताव सबको पसंद पड़ा। वो इतना घटना सुखदेव गोस्वामी बतला रहे हैं। अब इसमें एक दो चीज है बहुत महत्वपूर्ण है। ये देवता लोग बलि महाराज के दरबार में गए और उसका वर्णन पहले आप लोग सुन चुके हैं। दृष्ट्वा अरिन अपि संयत्ता, जातक क्षोभन सुनायका निषेध दैत्यराट श्लोक्य संधि विग्रह कालवित। अब देवता लोग गए असुरों के दरबार में और यद्यपि कह रहे हैं कि वे लोग देख रहे हैं अपि असंयता, वे लोग देखे कि देवता लोग कोई हथियार नहीं लिए हैं। अब हथियार नहीं लिए हैं लेकिन फिर भी जातक क्षोभा नायक बलि महाराज अनुभव कर रहे हैं कि ये जो हमारे सहयोगी हैं, ये दैत्य लोग हैं, तो ये तो उन पर क्रुद्ध हो रहे हैं। वे उत्तेजित होने लगे कि भले हथियार नहीं लिए हैं, अब नजदीक आ गए तो इनको मरना चाहिए। ये देखिए दैत्य का यह स्वभाव है। वे स्पष्ट देख रहे हैं कि ये लोग कोई हथियार नहीं लिए, देवता लोग कोई हथियार लेकर के नहीं गए थे, लेकिन फिर भी जो असुर हैं वे उत्तेजित हो गए। लेकिन निषेधक दैत्यराज बलि महाराज उनको मना किए, उनको तुरंत मना कर दिए, अपने सहयोगियों को मना किए। श्लोक क्या संधि विग्रह कालवित, दो कारण दे रहे हैं। बलि महाराज बहुत ही प्रशंसित व्यक्ति है, उनकी प्रतिष्ठा है और वे जानते हैं कि किस स्थिति में युद्ध करना चाहिए, किस स्थिति में संधि करना चाहिए। यद्यपि दोनों एक ग्रुप के हैं लेकिन दोनों के स्वभाव में, दोनों के विचार में, दोनों के चेतना में काफी अंतर है। पारिवारिक दृष्टि से देखा जाए तो प्रहलाद महाराज भी असुर कुल के हैं लेकिन उनका परिचय नारद दिए हैं रहिता सुरो सुरह, वे असुर जरूर हैं लेकिन असुर के चेतना से रहित हैं। और ठीक है, यही सिद्धांत बलि महाराज पर लागू हो रहा है। बलि महाराज तो राजा है असुरों के लेकिन आसुरी चेतना में नहीं है। वे जानते हैं कि किस व्यक्ति के साथ किस परिस्थिति में कैसा व्यवहार करना चाहिए। वे अतिशय प्रतिष्ठित व्यक्ति, वे अपने प्रतिष्ठा का ध्यान रखते हैं और भले ही असुरों के लीडर हैं लेकिन वे पूर्णतः भगवान के भक्त हैं, साधु पुरुष हैं। और ऐसा देखा जाता है कि जो साधु व्यक्ति है तो वह अपने घर में दुश्मन का भी सत्कार करता, यही नीति है। और इस नीति की स्थापना भगवान भी किए। आप श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं, वहां भगवान के एक लीला का वर्णन है कि एक दिन माँ यशोदा कृष्ण को गोद में लेकर के उनका लालन पालन कर रही थी, सहला रही थी, बार बार उनके मुख को चुंब रही थी, जो ललाट पर बाल हैं उसको अपने अंगुली से हटा करके कभी मुख को चुंब रही है, कभी ललाट को चुंब रही है, कभी आंख को चुंब रही है और बच्चे को कभी कभी ऊपर भी फेंक रही है। एक साल का बच्चा है, एक हायन आसीन, वो ऐसे लालन कर रही है। अब लालन करने में अब स्नेह बस बच्चे से कई एक बात भी कर रही है। अब कोई पक्षी दिख रहा है, पक्षी दिख गया और दिखने का कारण है कि अब भगवान को गोद में माँ यशोदा ली है तो भगवान के मुख को देखने के लिए आकाश के पक्षी भी मड़राने लगे, नजदीक आने लगे। अब तो माँ यशोदा ऐसे कह दी कि पक्षी के साथ जाओगे, वो गोद में ली है, पक्षियों को देख करके भगवान थोड़ा हाथ उठा रहे ऐसे अंगुली की है और माँ कहने लगे कि पक्षी के साथ जाओगे, अब तो भगवान उधर ही लपकने लगे। अब भगवान इतना हट पकड़ लिए कि माँ ऐसे उनको आकाश में फेंक दी। आकाश में फेंकी तो बच्चा हंसने लगा और बार बार इसी क्रिया को करने के लिए आग्रह करने लगा, हट करने लगा। तो माँ ऐसे उत्तोलन कर रही है और तब तक वो अनुभव की कि बच्चे का भार बहुत बढ़ गया, गिरिकूटवत वो ऐसा अनुभव करने लगे कि मानो कोई पहाड़ का शिखर हो या पहाड़ का सम ढेरी आ गया हो। अब इतना भार बढ़ गया कि वह अब गोद में रख ही नहीं सकती। तो अब उसके मन में विचार आया कि सबकी माँ तो पृथ्वी है, अब उसी के गोद में मैं सौंपता हूँ। भगवान को वहां रख दी, भूमि पर रख दी और सोची कि कुछ है, अब इसके झाड़ फूंक के लिए उपाय करें, आखिर क्यों इसका भार बढ़ा है, कुछ अनुष्ठान करना चाहिए, कुछ ब्राह्मणों को बुला करके समझना चाहिए। और तब तक त्रिणावर्त आया और भगवान को उठा करके आकाश में ले गया। अब एक प्रश्न खड़ा किया गया कि भगवान का तो वजन पर्वत के शिखर से भी अधिक है, तो हवा कैसे उनको उड़ा ले गया? अरे तो तृण को तो आवर्तित करता था, पहाड़ को तो उड़ाने की शक्ति नहीं है। और समाधान दिया गया है कि वो तृणावर्त उड़ा करके नहीं गया, भगवान ही ऊपर उठ गए। भगवान क्यों ऊपर उठ गए? वो सिद्धांत दे रहे हैं कि आया तो यदि दुर्जनों पी सहसा, यदि दुष्ट व्यक्ति भी अचानक स्वीयालय अपने घर पर आ जाए तो खड़ा हो करके ऊपर उठ करके उसका सत्कार करना होता है। और मानो भगवान यही शिक्षा देने के लिए, वे जानते थे कि तृणावर्त है लेकिन अपने घर में आ गया तो खुद ही उठ गए। तो हम यह कह रहे हैं कि सदाचार यही है। और बलि महाराज के देवता लोग गए, बलि महाराज के जो सहयोगी असुर थे तो उनके मन में तो उत्तेजना आ गई कि इनको मार डालना चाहिए। एकदम नजदीक आ गए हैं, अपने रेंज में आ गए हैं, सदा सर्वदा के लिए कांटेक्ट दूर कर दें। लेकिन बलि महाराज उनको मना किए क्योंकि साधु स्वभाव के हैं। और जब देवता लोग प्रस्ताव रखे, इंद्र प्रस्ताव रखे, तो तत्व रोचक दैत्यस्य बलि महाराज को पसंद पड़ा और कह रहे हैं कि अन्य ये सुराधिपा जो दूसरे असुर के लीडर थे, उनके सेनानायक थे, तो वे लोग भी इस प्रस्ताव को पसंद किए। और भी प्रश्न होगा कि वे असुर चेतना के हैं, देवताओं के प्रस्ताव को कैसे स्वीकार कर रहे हैं, वे तो विरोध में रहते हैं। वो तो कह रहे हैं कि दैत्य लोग कैलकुलेट कर लिए कि अमृत का यत्न कर रहे हैं, अमृत प्राप्त होगा, वो तो अमृत हाथ में आएगा तो हम लोग अपने कब्जे में कर लेंगे। क्योंकि उनको तो प्रैक्टिकल अनुभव है कि देवताओं को तो अभी हम लोग बहुत पीटे थे, तो स्पष्ट है कि बहुत कमजोर है, तो सहायता तो जरूर करेंगे, ये सब चीज करेंगे, लीडर ये रहेंगे, ये अपना उपाय दे रहे, हमारा सहयोग ले रहा है, तो हम लोग तैयार हो जाए। लेकिन वे तैयार हुए इसलिए नहीं कि देवताओं को अमृत मिल जाएगा, उनको फुल कॉन्फिडेंस है कि देवता तो इतने कमजोर हैं कि इनसे तो कभी हम लोग छीन लेंगे। तो केवल छीनने के भावना से कहे कि ठीक है, चलिए प्रस्ताव आपका मान्य है, तो देवताओं के सहयोग की भावना से नहीं, पूर्णतः अपने स्वार्थ से प्रेरित हो करके, अपने स्वार्थ के वशीभूत हो करके, और दैत्य लोग उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर रहे हैं। कि दैत्यों के जो लीडर हैं संबर या अरिष्ट नेमी, वे भी और भी त्रिपुर नगर में उस सिटी में जो लोग भी थे, सब लोग इसको पसंद किए, सब लोग इसको स्वीकृति दिए। श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि इस समय जैसे स्वार्थ पर आधारित समझौता चल रहा है, और पहले भी ऐसा चलता था, और ऊपर के लोकों में भी ये आज भी चल रहा है। देवता लोग भी समझौता करने गए हैं स्वार्थ के आधार पर, और दैत्य लोग भी इसकी स्वीकृति दे रहे हैं स्वार्थ पर आधारित। लेकिन दोनों में अंतर इतना है कि देवता लोग भगवान के आश्रित, और सफलता उसी को मिलती है जो भगवान का आश्रय में रहता है, और इसलिए भगवान के आश्रय को स्वीकार करके ही अपना कोई उपक्रम प्रारंभ करना चाहिए। समुद्र मंथन के बाद सुखदेव गोस्वामी स्पष्ट निर्णय दिए कि भगवान के आश्रय लेने से देवता लोग अमृत का पान किए, और भगवान का आश्रय नहीं है तो दैत्यों को केवल परिश्रम मिला। बहुत बड़ा शिक्षा का प्रसंग है, इस पर विचार करना चाहिए। हरे कृष्ण। प्रश्न है किसी का? प्रश्न और प्रसाद दोनों ऑप्शन है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की।